लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के जीवन में शिक्षण का एक अलग ही महत्व है। शिक्षण का तात्पर्य उन सारी चीजों को सुनने और उन्हें अपने जीवन में अमल करने से है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने हेतु सिखलाई, बतलाई और समझाई जाती हैं। अतः सही अर्थ में देखा जाए तो मानव जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी या कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हमारे जीवन में शिक्षण के पल होते हैं। इतना ही नहीं, मानव के रूप में हमारी शिक्षा दीक्षा केवल स्कूलों और महाविद्यालयों में नहीं होती, बल्कि जीवन की सच्ची और उचित शिक्षा तो हमें जन्म के पहले क्षण से ही अपने परिवारों में मिलती है, जहां हम अपनों के प्रेममय वचनों को सुनते हैं। इस भांति किसी भी व्यक्ति का अच्छा और बुरा होना हमारे लिए उसके उस परिवेश का हाल प्रस्तुत करता है जहां से वह आता है, जहां उसकी परवरिश हुई है। यह हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के उस सटीक और उस मूल्यवान कथन की याद दिलाती है जिसे यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहते हैं। एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना ही एक बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। श्रोताओं, वर्ष के 15वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें यीशु का अपने शिष्यों को दिए जाने वाली उस शिक्षा का जिक्र करता है जिसमें हम दिशा निर्देशन को पाते हैं। सुसमाचार का यह संदर्भ हमारे लिए गुरुवर प्रभु यीशु ख्रिस्त का अपने शिष्यों को स्वयं अपने कार्यों को पूरा करने हेतु भेजे जाने का वृतांत प्रस्तुत करता है। आइए हम सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी वचनों को सुनते हुए स्वयं से पूछें कि क्या हम यीशु के द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले निर्देशों को समझते हैं? क्या हम अपने जीवन में यीशु के इस दिशा निर्देश का अनुपालन करते हैं? क्या हम अपने कार्यों में यीशु ख्रिस्त की प्रेरिताई के मनोभावों को धारण करते हैं?
ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वह बारहों को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। वे पैरों पर चप्पल बांधे और दो कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें उस जीवनदाता ईश्वर में विश्वास करने और सदैव उनमें निर्भर रहने की कृपा और शक्ति प्रदान करे, जिनके द्वारा हमने जीवन का दान पाया है, जिससे हम अपने जीवन की सारी चीजों में उनकी महिमा और स्तुति कर सकें, जो हमारे मानवीय जीवन का सार है। श्रोताओं, नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए नबी का ईश्वर के द्वारा भेजे जाने की बात कहता है, जिससे वह ईश्वर के वचनों को घोषित करते हुए इसराइल के लिए भविष्यवाणी करे। लेकिन बेथेल के याजक अमास्या आमोस को वहां से जाने का आदेश देते हैं। वह उसे यूदा जाकर भविष्यवाणी करने को कहते हैं, लेकिन नबी आमोस ईश्वर के द्वारा अपने भेजे जाने की बात यह कहते हुए करते हैं कि वह ना तो नबी था और ना ही नबी की संतान, बल्कि वह तो एक साधारण चरवाहा था और गूलर के पेड़ों को छांटा करता था। लेकिन ईश्वर ने उसे चुना और अपने कार्यों को पूरा करने हेतु भेजा। अतः यहाँ हम नबी आमोस का ईश्वर के द्वारा दिए गए अपने कार्यों के प्रति एक पूर्ण समर्पण और निष्ठा को पाते हैं। नबी आमोस में हम एक निर्भयता को पाते हैं, जो इसराइल में अपनी भविष्यवाणी के कारण अपने जीवन को खतरे में पाते हुए भी उसकी चिंता किए बिना अपने कार्यों को जारी रखते हैं। श्रोताओं, यह हमें अपने जीवन में आत्म मंथन करने का आह्वान देता है कि हम स्वयं को मिले कार्यों को कितनी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करते हैं। आज दुनिया की स्थिति ऐसी है जहां हम अपने में और लोगों को सत्य का पक्ष लेने में भयभीत पाते हैं। हम सच्चाई का सामना करने और उसे घोषित करने में हिचकिचाहट अनुभव करते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाला दुनिया की निगाहों में अपने को सबों के लिए शत्रु बना लेता है। हम अपने में भय के कारण कितनी बार सच्चाई का साथ नहीं देते और चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन क्या यह हमारे लिए उचित और सही है? इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ पुनः ईश्वर में हमें मिले जीवन की चर्चा करते हुए कहता है कि ईश्वर ने सृष्टि से पहले ही हमें अपने कार्यों को पूरा करने हेतु चुना और अपने आध्यात्मिक वरदानों से विभूषित किया है। उन्होंने अपनी इच्छा में हमें प्रज्ञा और बुद्धि प्रदान की है, जिससे हम उनका उपयोग करते हुए उन चीजों का चुनाव करें जो ईश्वर को प्रिय हैं, जिनके द्वारा उनके नाम की महिमा और स्तुति होती है। और जब हम यह करते तो हम यीशु ख्रिस्त में दत्तक पुत्र बनते हैं। श्रोताओं, यह हमें अपने दैनिक जीवन के कार्यों का मूल्यांकन करने का आह्वान करता है कि हम उन्हें कैसे और किसके लिए करते हैं। हम में से बहुत कोई ऐसे हैं जो अपने जीवन की सारी चीजों में अपने नाम की महिमा और स्तुति, दुनिया में वाहवाही और प्रतिष्ठा पाने की कामना करते हैं। यही दुनिया की रीत है, जिसके कारण हम लोगों को धन दौलत नाम शोहरत के पीछे भागता हुआ पाते हैं। आज दुनिया भौतिकतावाद से ग्रसित है और इसके कारण हम स्वयं अपने लोगों के बीच गला काट प्रतियोगिता को पाते हैं। आज ईश्वर हमें जीवन में अपने कार्य करने के मनोभावों की परख करने को कहते हैं। क्या हम उन्हें अपने लिए करते हैं या हम इसे दूसरों के लिए करते हुए ईश्वर की महिमा करते हैं? श्रोताओं, इसका उत्तर आज के सुसमाचार में निहित है, जिसे हमने सुना। यीशु अपने शिष्यों को अपने कार्यों को पूरा करने हेतु दो दो करके भेजा। वे स्वयं अपने पिता के घर को छोड़कर मानव बन हमारी मुक्ति हेतु दुनिया में आए और हमारे लिए सब कुछ किया और सहा। अतः जिस भांति उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को समर्पित किया, वे हमें अपने जीवन को दूसरों की सेवा हेतु अर्पित करने को कहते हैं। वे हमें दूसरों की खुशी का कारण बनने को कहते हैं और इसके लिए हमें सदैव अपने संग विश्वास और भरोसा में जुड़े रहने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, ईश्वर ने हमें अपने राज्य की स्थापना हेतु कार्य करने को भेजा है, जिसमें हम प्रेम के आदान प्रदान को पाते हैं, जिसकी शुरुआत हमारे लिए त्रित्वमय ईश्वर से संयुक्त रहने में होती है। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम को समझने की शक्ति प्रदान करें, जो हमारे लिए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने से आती है, जिससे हम उस प्रेम से ओत प्रोत होकर ईश्वरीय राज्य की स्थापना में सहयोग कर सकें।
जीवन में हर पल का अपने सुरों में प्रभु रचूंगा मैं संगीत तेरा, गाऊंगा मैं नाचूंगा मैं यूं तेरी भक्ति करूंगा, गाऊंगा मैं नाचूंगा मैं यूं तेरी भक्ति करूंगा, तेरी असीम उदार रचूंगा मैं संगीत तेरा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। फादर सेबास्तियानो डी आमरा को सिलसिला आंदोलन के माध्यम से मिंदानाओ में ख्रिस्तियों और मुसलमानों के बीच शांति और संवाद को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए फिलीपींस की कैथोलिक कलीसिया की ओर से बिशप जॉर्ज बार्लिन गोल्डन क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विदेश मिशन के लिए परमधम पीठी संस्था पीमे के फादर सेबास्तियानो डी आमरा अंतर धार्मिक आंदोलन सिलसिला के संस्थापक हैं। बिशप जॉर्ज बार्लिन गोल्डन क्रॉस पुरस्कार कार्तिक कलीसिया में धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले फिलीपींस के पहले पुरोहित की स्मृति को समर्पित है। पुरस्कार वितरण समारोह 7 जुलाई को कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की आम सभा के दौरान संपन्न हुई। फादर सेबास्तियानो जो 40 से अधिक वर्षों से फिलीपींस में मिशनरी हैं, एक साक्षात्कार में एशियाई द्वीप समूह में अपने सुसमाचार प्रचार के कार्य एवं सिलसिला आंदोलन द्वारा प्राप्त सफलता के बारे बतलाया। पुरस्कार के बारे जानने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया के बारे बतलाते हुए फादर ने कहा, मैं बहुत खुश हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि फिलीपींस में कलीसिया ने न केवल मेरे काम को मान्यता दी है बल्कि पिछले कुछ सालों में मेरे काम से विकसित हुए विभिन्न पहलुओं को भी मान्यता दी है। मिशन पर अपने शुरुआती दौर में मैंने विद्रोही समूहों और सेना के बीच मध्यस्थ के रूप में शांति स्थापना में योगदान दिया। यह एक कठिन दौर था जो शांति वार्ता के कारण समाप्त हुआ। भले ही व्यक्तिगत रूप से मुझे सेना के साथ इतनी समस्याएं थीं कि मुझे 1981 में फिलीपींस छोड़ना पड़ा और जब मैं 1983 में फिलीपींस लौटा तब मैंने मुस्लिम और ख्रिस्तियों से सिलसिला आंदोलन का प्रस्ताव रखा। जब युवा लोग जरूरतमंद लोगों से मिलते हैं तो इसका उनके जीवन पर गहरा परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। बुएनस आयरेस के लमातांजा युवाओं के एक दल ने अपने समुदायों में गरीबों की मदद करने का फैसला किया है। पोप फ्रांसिस ने 20 नवंबर 2022 को आस्ती के महागिरजा घर में देवदूत प्रार्थना के दौरान कहा था, हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो वास्तव में अतिक्रमणकारी गैर अनुरूपतावादी हों और अपने मोबाइल फोन के गुलाम ना हों, बल्कि जो मरियम की तरह दुनिया को बदल दें, यीशु को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों की देखभाल करें, लोगों के साथ भाईचारा वाले समुदाय का निर्माण करें और शांति के सपनों को पूरा करें। चाको प्रांत के प्रेसिडेंट सारो के सेंस पेना के सुदूर इलाकों में ओपेरा डॉन ओरियन के धर्म समाजों के साथ युवाओं के एक समूह ने 19 से 22 जुलाई 2023 को एक मिशन में भाग लिया था, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सेवा की यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, जो जल्द ही एक परिवर्तनकारी अनुभव में बदल गया, जिसमें सुसमाचार प्रचार का सही अर्थ एक अच्छे और करुणा के कार्य में प्रकट हुआ। ये युवा सूर्योदय से सूर्यास्त तक भले कार्यों के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र दिल्ली में 21 से 31 जुलाई तक होने वाला है। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 28 स्थानों के प्रस्तावों की जांच करेगा तथा विश्व धरोहर सूची में पहले से शामिल 123 स्थानों तथा खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल 123 स्थानों के संरक्षण की सूची की भी जांच करेगा।
चूंकि सूडान की आधी से अधिक आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति ने युद्धग्रस्त देश में मानवीय सहायता पहुंचाने में आने वाली बाधाओं की चेतावनी दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता पर दुख जताया है। सूडान में 15 महीने के संघर्ष के बाद शांति वार्ता ठप हो गई है। सूडानी सशस्त्र बलों SAF के नेता जनरल अब्दे फताह ने हाल ही में जनरल मोहम्मद हमदान के नेतृत्व वाले अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF और उनके सहयोगी मिलिशिया के साथ बातचीत समाप्त कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 अप्रैल 2023 को युद्ध शुरू होने के बाद से कम 15,500 लोग मारे गए और 2 मिलियन लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। मानवीय संकट और भी बदतर होता जा रहा है। 25 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर मौजूद बाधाओं के कारण NGO और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की संस्थाएं नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कई स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ नागरिक आबादी को भूखा मारने के लिए अकाल को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की है। उधर गाजा युद्ध विराम वार्ता जारी रखने के लिए एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल मिस्र में है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय के एक बयान अनुसार गाजा युद्ध विराम वार्ता के लिए इजरायल के सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक रोनेन बार के नेतृत्व में और इजरायल रक्षा बलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को काहिरा के लिए रवाना हुआ। यरूशलेम में टीवी रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि वार्ता गाजा और मिस्र के बीच सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से संभावित इजरायली वापसी और रफाह क्रॉसिंग को फिर से खोलने पर केंद्रित होगी। बुधवार को इसराइल की सेना ने गाजा शहर पर इसराइली सैन्य हमले के बीच सभी निवासियों से तुरंत चले जाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार जुलाई की शुरुआत में गाजा में विस्थापितों की संख्या 1.9 मिलियन तक पहुंच गई थी। इससे पहले जॉर्डन हशमाइट चैरिटी ने जॉर्डन सशस्त्र बलों के साथ समन्वय में मानवीय आपदा को कम करने के लिए गाजा पट्टी में सहायता के 50 लोरी भेजे थे। सहायता सामग्रियों को विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से इकट्ठा किया गया था। उधर पाकिस्तान के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने अन्य ख्रिस्तियों के साथ मिलकर एक नए कानून को अंतिम मंजूरी देने का स्वागत किया है, जिसमें ख्रिस्तियां नाबालिगों को जबरन विवाह से बचाने के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे पिछले कानून के तहत लड़कियों की शादी 13 साल के उम्र की हो सकती थी, जबकि लड़कों की शादी 16 साल के उम्र की हो सकती थी। कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष सैमसन ने न्याय और शांति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अन्य ख्रिस्तियों के साथ मिलकर इस कानून को अंतिम मंजूरी मिलने पर संतोष व्यक्त किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।